आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम स्कंध 5 अध्याय 1 गद्य 9। पांच एक नौ महाराज प्रियव्रत का चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र ह वा एनं देवर्षिः हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसा एव उत्थाय अर्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहित अञ्जलिः उपतस्थे। तत्र ह वा एनम् देवर्षिर् हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसैव उत्थाय अर्हणेन सह अर्हणेन सह पुत्राभ्याम् सह पिता पुत्राभ्याम् अवहितांजलि रूपतस्थे। तत्र ह वा एनम् देवर्षिर् हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसैवोत्थाय अर्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहितांजलि रूपतस्थे। ये गद्य है तो अपने सुविधा के अनुसार तोड़ तोड़ करके पढ़ सकते हैं। यह श्लोक नहीं है, छंद नहीं है। तत्र ह वा एनम् देवर्षिर् हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् होतांजलि रूपतस्थे। तत्र ह वा एनम् तत्र वहाँ ह वा निश्चय ही एनम् उसको देव ऋषि देवर्षि नारद हंसयानेन अपने वाहन हंस द्वारा पितरम अपने पिता भगवंतम सर्वशक्तिमान हिरण्यगर्भम ब्रह्मा जी को उपलभमान समझकर सहसा एव तुरंत उत्थाय उठकर अर्हणेन पूजन सामग्री सह सहित पिता पुत्राभ्याम प्रियव्रत तथा उनके पिता स्वयंभुव मनु अवहित अंजलि आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उपस्थ अर्चना की। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: नारद मुनि के पिता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। नारद ने जैव ही विशाल हंस को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं, अतः वे स्वयंभुव मनु तथा अपने द्वारा उपदेश किए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक भगवान की आराधना प्रारंभ की। तात्पर्य: जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता भी थे, किंतु उनका विशेष विशिष्ट विशाल हंस था। अतः जैसे ही नारद मुनि ने हंस को देखा तो वे समझ गए कि उनके पिता ब्रह्मा जी, जिन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, आ रहे हैं। वे ब्रह्मा जी का स्वागत करने तथा उनका सम्मान करने के लिए तुरंत स्वयंभुव मनु तथा उनके पुत्र प्रियव्रत सहित उठ खड़े हुए। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रियव्रत महाराज के विषय में सुन रहे हैं। उनके विषय में प्रश्न किया गया है। प्रश्न आप जानते हैं कि आत्मा राम है, अपने में ही सुख ले रहे थे, अपने स्वरूप के आनंद में निमग्न थे या भगवान के गुण रूप में निमग्न थे, तो ये फिर गृहस्थी में कैसे रम गए? ये दोनों में अंतर है क्या? यानी कि हाँ, बहुत भारी अंतर है। गृहस्थी के लिए कह रहे हैं कि कर्म मूल कर्म बंध पराभव। ये गृहस्थी का ऐसा स्वरूप है कि इससे बहुत भारी कर्म बंधन लग जाता है और अपने स्वरूप का तिरस्कार होता है। पराभव मतलब पराजय हो जाता है। पराजय का क्या अर्थ है? कि व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है, कहाँ भगवान की सेवा करनी है, और पूरा चित्त वृत्ति पुत्र कलत्र के सेवा में ही लग जाता है। तो वे गृहस्थी में क्यों रमे? और फिर गृहस्थी में रम गए और फिर भी इसका त्याग कैसे कर दिया? गृहस्थी का त्याग बहुत कठिन होता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में सुखदेव गोस्वामी प्रियव्रत महाराज की कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोग सुन चुके हैं कि प्रियव्रत महाराज जन्म से ही निवृत्ति मार्ग के तरफ आकर्षित थे। यद्यपि वे अपने पिता के बड़े पुत्र थे, मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े हैं लेकिन फिर भी ये राज्य स्वीकार नहीं किए, उत्तानपाद राज्य किए, और ये ब्रह्म सत्र में दीक्षित होने वाले थे। ब्रह्म सत्र का कई एक ढंग से अर्थ किया जाता है। सत्र मतलब विस्तार, ब्रह्म मतलब वेद। ब्रह्म सत्र का एक अर्थ है कि अब ये दीक्षा लेने वाले थे, संकल्प करने वाले थे कि अब एक एक क्षण हमारा श्रवण कीर्तन में बीतेगा, अब इसी में समय बीतेगा, दूसरा कार्य नहीं करेंगे। नारद जी सहमति दे चुके थे, नारद जी इनके गुरु हैं, इन्हीं के कृपा से, इन्हीं के संग से, इन्हीं के उपदेश से ये निवृत्ति में निमग्न थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि मनु महाराज की इच्छा थी कि ये राज्य का कार्य भी देखें। मनु महाराज इसके लिए आज्ञा प्रदान किए, लेकिन इनका मन इधर नहीं था। अपने पिता के भी आज्ञा को ये स्वीकार नहीं किए, सहमति नहीं प्रदान किए। लेकिन ब्रह्मा जी तो सृष्टि के इंचार्ज हैं, उनको बहुत चिंता रहती है कि सृष्टि का विस्तार होना चाहिए, तो वे स्वभवना ब्रह्म लोक से यहाँ गंधमादन पर्वत पर उतरे। पीछे के श्लोक में हम लोग सुने कि ब्रह्मा जी जब उतर रहे हैं तो बहुत शोभित हो रहे हैं चंद्रमा के समान, और जगह जगह देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं, और उनके पीछे पीछे वे भी चल रहे हैं। इसका वर्णन हम लोग सुन चुके हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि तत्र हवा एनम देवर्षि हंस यानेन पितरम भगवंतम हिरण्य गर्भम उपलब्धमान। गंधमादन पर्वत के द्रोणी में पहले से ही नारद जी थे, प्रियव्रत महाराज थे, और प्रियव्रत महाराज के पिता मनु महाराज भी वहाँ उपस्थित थे। और नारद जी के विषय में कह रहे हैं कि नारद जी दूर से ही देखे पितरम पिताजी को। भाई कैसे दूर से पिताजी को पहचान गए? तो कह रहे हैं कि हंस याने न, यद्यपि ब्रह्मा जी के साथ कई एक देवता चल रहे थे अपने गणों के साथ, लेकिन हंस को देख करके पहचान गए। हम लोग है कभी कभी कहते हैं हम तो गाड़ी देख करके ही समझ गए कि आप आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के वाहन को देख करके, हंस को देख करके वे समझ गए कि हमारे पिताजी आ रहे हैं। तो सहसैव उत्थाय, जब उनको पता चला कि पिताजी आ रहे हैं तो तुरंत वे खड़ा हो गए। और जब नारद जी खड़ा हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनके शिष्य प्रियव्रत महाराज भी खड़ा हो गए और मनु महाराज भी खड़ा हो गए। और ये खड़ा हो करके हाथ जोड़ करके विनीत भाव से उनकी पूजा सामग्री से आराधना करने लगे, उनको फूल अर्पित किए, स्तुति किए, या बाद में चरण धोए, जो जो पूजा किए हों। तो इस श्लोक में यही वर्णन है कि ब्रह्मा जी जब गंधमादन पर्वत पर आ रहे हैं और नारद जी का क्या व्यवहार हुआ, ये क्या किए, और प्रियव्रत महाराज क्या किए, मनु महाराज क्या किए, और सबके लिए वर्णन आ रहा है कि खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके और उनके अर्चना की, उनके पूजा की, ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी के लिए शब्द दे रहे हैं पितरम। नारद जी के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है कि ब्रह्मा जी उपस्थित हुए तो उनका सम्मान करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता हैं। उत्संगान जायते नारद से श्रीमद्भागवतम में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी के उत्संग से, गोद से नारद जी का जन्म हुआ है। तो अपने पिता आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अर्चना करेंगे। और ब्रह्मा जी तो पिता हैं, ठीक है, पद के दृष्टि से देखा जाए तो सब लोग उनका सम्मान करते हैं। ब्रह्मा जी खुद स्वीकार किए हैं कि अध्यासितम लोक नमस्कृतम, यद भगवान से कह रहे हैं कि हम तो ऐसा पद प्राप्त किए हैं सर्वलोक नमस्कृत, सब लोग नमस्कार करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं, बहुत बड़ा पद है उनका, ब्रह्मा है। और उनके लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं भगवंतम, ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं कि भगवान है। अब यह सुनते ही कई एक लोग प्रश्न करेंगे, ब्रह्मा जी कैसे भगवान शुभ कृष्ण तो जरूर प्रश्न करेंगे। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी हिरण्य गर्भ, ब्रह्मा जी तो भगवान हैं, गुणावतार हैं, भगवान हैं, लेकिन अब इसके साथ ही ये भी है कि जो भगवान के बराबर मानेगा तो पाखंडी के दर्जा में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि भगवंतम, क्यों भगवंतम कह रहे हैं कि हिरण्य गर्भ, वे हिरण्य गर्भ है, इनको प्राप्त करके देह करके ये लोग पूजा किए। ब्रह्मा जी को भगवान कहा जा रहा है, लेकिन भगवान को स्पष्ट किया गया है ये हिरण्य गर्भ भगवान है। वे हिरण्य गर्भ है और भगवान कहा जाता है, इनकी भी उपासना की विधि बतलाई गई है। जिन लोगों का चित्त रजोगुण से आक्षिप्त है, स्थिर नहीं हो रहा है, और बस इतना रजोगुण उनके चित्त में छाया हुआ है कि काम के तरफ, कर्म के तरफ ही उनका मन लग रहा है, भगवान के राधा श्याम सुंदर के अंग पर उनका ध्यान नहीं टिक रहा है। विधि तो यह है कि भगवान की अर्चना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, लेकिन अब जिसका मन बहुत कर्म परायण है, इतना कर्म में रचा पचा है कि वे हाथ जोड़ करके बैठेगा भी, आसन पर बैठेगा भी तो मन में तो वही काम धंधा ही गूंजने लगेगा, भगवान के तरफ उसका मन नहीं जाएगा। तो मन को भगवान के तरफ लाया जाए, कम से कम उसकी प्रवृत्ति भगवान के तरफ जाए, इसके लिए भगवान के स्थविष्ट रूप की धारणा की बात कही गई है। उसको भगवान का जो स्थविष्ट रूप है, ये भौतिक ब्रह्मांडात्मक रूप है, इसी में भगवान के अंग की कल्पना की गई है। पाताल ये उनका पैर है और स्वर्ग इत्यादि ऊपर के अंग है। ब्रह्मांड में कोई भगवान के रूप के, भगवान के अंग के रूप में कल्पित किया गया है, तो इससे उपासना को हिरण्य गर्भ उपासना कहते हैं। और यह ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का शरीर है, ब्रह्मा जी शरीर ही ब्रह्मांड के रूप में है। में एक प्रश्न होगा कि यहाँ वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी तो हंस पर बैठ कर के आ रहे हैं, ये ब्रह्मांड ही उनका शरीर है, ये कैसे माना जाए। कई एक चीज समझना होता है, किसी किसी व्यक्ति के एक से अधिक रूप है, जैसे पृथ्वी देवी तो एक देवी हैं, देवताओं की मीटिंग होगी तो उसमें भाग लेगी, अपना दुख सुख निवेदित करती हैं, लेकिन इनका शरीर तो पूरा भूमंडल ही है। कई एक नदियां हैं, गंगा जी एक देवी हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका शरीर जल रूप भी है। और तो ब्रह्मा जी का शरीर ये ब्रह्मांडात्मक है। तो बार बार भागवतम में यह शब्द आता हिरण्य गर्भ, ये हिरण्य गर्भ का क्या अर्थ होता है थोड़ा समझना चाहिए। हिरण्य मतलब सोना होता है, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का अर्थ करते हैं ना, हिरण्यकश्यपु मतलब जिसका सोना का ही पलंग हो, हिरण्याक्ष का अर्थ करते हैं कि जिसकी दृष्टि सोना पर ही है, मतलब धन पर जिसकी दृष्टि है, भोग पर विलासमय जीवन है, तो उसको हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कहते हैं। और हिरण्य गर्भ भगवान के लिए शब्द प्रयोग होता है, या कभी कभी सूर्य के लिए होता है और ब्रह्मा जी के लिए भी होता है। आप सृष्टि का प्रकरण पढ़ेंगे और महातत्व मिल करके एक अंडा के रूप में उभर आया, लेकिन उसमें प्राण नहीं था, मृतंड, इसी से वो अंडा है लेकिन मृत, और उसी में भगवान सूर्य प्रकट हुए, प्रकाशित किए उसको, इसलिए उनका नाम मार्तंड दे दिया जाता है। इसी पंचम स्कंद के अंतिम अध्यायों में ऐसा वर्णन है, और उनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, इसके बीच में है इसलिए। लेकिन जो सृष्टि का वर्णन है, तो जो ये अंड तैर रहा था तो उसमें भगवान प्रवेश किए, और भगवान प्रवेश करके और 1000 वर्ष तक उसी में खूब आराम से सोए। लेकिन जल में भगवान थे तो कांति सोने जैसा निकल रही थी, तेज प्रधान था। ये पंच तत्व है, जहाँ तेज की प्रधानता होती है, अग्नि तत्व की प्रधानता है, तो उसका वर्ण हिरण्य माना गया है, सोने के रंग का माना गया है। और जल की प्रधानता है तो चांदी के रूप में माना गया है, और दूसरे तत्व की प्रधानता है तो दूसरे धातु के रूप में माना गया है। तो हिरण्य रोचिसह श्रीमद् भागवतम में शब्द आया है, तो कांति सोने जैसे निकल रही थी जल में, और उनका नाम दिया गया हिरण्य गर्भ। कांति सोने जैसा इसलिए हिरण्य कह रहे हैं, और गर्भ का अर्थ है कि वही बीज हैं, उसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और इसलिए उनको हिरण्य गर्भ कहते हैं। और भगवान 1000 वर्ष तक सोए रहे, उसके बाद उससे अधिपुरुष से प्रकट हुआ, अधिपुरुष निकला, तो उस अधिपुरुष को ही उस मृतंड से अंड में ही एक दूसरा शरीर उत्पन्न हुआ, तो उसको भी हिरण्य गर्भ कहते हैं, और वह यह ब्रह्मांड है, और ब्रह्मा जी का ही शरीर माना जाता है। एक रूप से वह ब्रह्मा जी का शरीर है, तो इसलिए उनको हिरण्य गर्भ कहा गया है। तो यहाँ हिरण्य गर्भ हम भगवंतम कि ये हिरण्य गर्भ भगवान आ रहे हैं, और ब्रह्मा जी जरूर भगवान हैं, लेकिन ये कैसा भगवान है ये अपने मुख से अपना वर्णन किए हैं। आप घटना जानते हैं कि ब्रह्मा जी एक बार बछड़ा चुरा लिए, बछड़ा चुरा लिए, और भगवान ने तो पहले बछड़ा खोजे, उनको पता नहीं था कि बछड़ा कहाँ गए, वे तो पहले सोच रहे थे कि घास चरते हुए कहीं दूर चले गए होंगे, तो वे भोजन करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि वे कवर उठाए थे लेकिन मुंह में नहीं डाले, इतना इमरजेंसी आ गया। वैसे ही कवर लिए हुए और बछड़ा खोजने लगे, बिचिकाय समंतत, चारों तरफ खोज रहे थे। अब देखिए भगवान का क्या माधुर्य है कि जो घोषणा करते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानिनि चार्जुना, जो भूत भविष्य को जानते हैं, वही भगवान उन्हें भोजन त्याग करके, भोजन को स्थगित करके और बछड़ों को खोज रहे हैं, और वो पता नहीं लगा पाए। इसके बाद में समझ गए कि बछड़ा इधर नहीं है, ये ब्रह्मा ले गया है। और भगवान भी सोचो कि अच्छा अपना बेटा जब ऐसा किया तो उसको करने दो, भगवान ने दूसरी सृष्टि ही कर दी। यद्यपि इस सृष्टि के पीछे दूसरा भी कारण था, ब्रह्मा जी बछड़ा चुरा लिए और भगवान ने बछड़ा ग्वाल बाल बना लिए, तो ये बाह्य दृष्टि से है कि वो चुरा लिए तो उनके माता पिता के लिए, भाई ये गोप सखा जिनके साथ गए थे, अब कृष्ण के साथ आए थे, कृष्ण ब्रज में लौट करके जाएंगे तो अपने लड़के को जो माँ नहीं पाएगी तो उसको कैसा लगेगा, अब कृष्ण क्या जवाब देंगे। तो तत्कालिक रूप से तो उनको कोई संदेह न हो, वे भय में न पड़े, उद्विग्न न हो, तो गाय बना बछड़े बना लिए और गोप सखा की भी रचना कर ली, उनके साथ चले गए। लेकिन वास्तविक कारण यह था कि भगवान जैसे ही वत्स चारण के बाद ब्रज में जाते थे, तो ब्रज के जितने भी मातृभाव वाली गोपियां हैं सबके मन में इच्छा होती थी कि कृष्ण को हम अपने गोद में उठाएं। और जैसे कृष्ण जाते थे कई एक गोपियां कृष्ण को अपने गोद में उठा लेती थी, उनको बहुत सुख मिलता था। लेकिन तुरंत उनके मन में यह भावना आ जाती थी कि वो आखिर कृष्ण तो यशोदा के बेटा है, तो उनको कितनी लालसा होगी अपने बेटे को गोद में रखने की, और हम ही अपने गोद में रहेंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो गोपियाँ कृष्ण को गोद में उठाती थी लेकिन उनका जी नहीं भरता था, जी कचोट करके रह जाता था। और भगवान उनकी भावना को जानते थे, समझते थे, भगवान तो परम संवेदनशील व्यक्ति है, तो उनके अभिलाषा को पूरा करने के लिए कि वे जी भर करके गोद में रखें, अपने स्तन का दूध पिलाएं, तो एक साल तक वे बछड़े के रूप में और ग्वाल के रूप में रहे। तो जैसे मातृभाव वाले गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण को हम अपने गोद में उठावें, वैसे ही तो गायें हैं उनके भी इच्छा होती थी कि कृष्ण को हम चाटें। कई एक जगह आप फोटो देखे होंगे कि कृष्ण डायरेक्ट स्तन में मुंह लगा दिए हैं और गाय लात नहीं मार रही है बल्कि चाट रही है, तो उनकी भी अभिलाषा थी। और यहाँ तक कि जो बैल हैं वो तो उन लोगों की भी अभिलाषा थी कि कृष्ण का स्पर्श पावे। कोई पिता है, छोटा बच्चा उसके शरीर पर चढ़ता है तो उसको सुख मिलता है, अच्छा लगता है। तो भगवान ने जब छोटे थे तो बहुत चंचल थे और कभी कभी तो बछड़ों के पूंछ पकड़ते थे, और कभी कभी बैल बैठे हैं, सांड बैठे हैं तो उनके शरीर पर जा करके चढ़ने लगते थे। वो शरीर पर चढ़ रहे हैं तो सांड को या बैल को तो बहुत सुख मिलता था और वे देह पसार देते थे, फैला देते थे। लेकिन माँ यशोदा तो बहुत भयभीत होती थी कि सिंह वाला सांड है, कहीं सिंह चला दिया तो पेट फट जाएगा, दौड़ करके कृष्ण को पकड़ लेती थी। तो कहने का आशय यह है कि ब्रज में कई एक गोपियाँ हैं मातृभाव रखती थी, उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी, गायों की तृप्ति नहीं थी, बैलों की तृप्ति नहीं थी, तो सबको एक अवसर प्रदान करने के लिए, तृप्त करने के लिए भगवान बछड़े का रूप धारण कर लिए और ग्वाल बाल का रूप धारण कर लिए। ब्रह्मा जी चोरी किए तो एक तरह से भगवान ने को एक अवसर मिल गया ब्रजवासियों को सुख देने का। लेकिन ब्रह्मा जी जब देखे भगवान को तो वे बहुत हैरत में पड़ गए, कह रहे मैं जिन बछड़ों को ग्वालों को चुरा करके ले गया हूँ तो वे तो ऐसे सोए हैं, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कृष्ण वैसे ही आनंद ले रहे हैं बछड़ों के साथ, ग्वालों के साथ, तो कौन सत्य है, कहीं वही तो उठ करके नहीं आए, तो दौड़ करके उधर देखने गए, क्योंकि वैसे ही सो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को अपने गलती का एहसास हुआ और वे रियलाइज करने लगे कि हम तो बहुत भारी अपराध कर दिए, अपने सुख के लिए भगवान के लीला में बाधा डाला। तो भगवान से क्षमा मांगने के लिए भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान के स्तुति में कई एक चीज कह रहे हैं, वे भगवान के विषय में बोलना चाह रहे हैं, भक्ति की महिमा को बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपके गुण का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता, फिर वर्णन कैसे कर सकता। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके दो स्वरूप हैं, एक को निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है और एक को सगुण ब्रह्म कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जहाँ तक निर्गुण ब्रह्म की बात है तो उसका तो ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है, मन को निर्विषय कर दिया, पूरा मन से विषय हट जाए, तो भगवान हृदय में हैं वे प्रकाशित हो जाते हैं, उनका अनुभव हो जाता है। और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान थोड़ा आसान है, लेकिन जो आप अवतार लिए हैं तो गुणात्मनस्ते पे गुणान विमातुम हितावतीर्णस्ते कई सिरे से, और जो अवतार लेकर के आप लीला कर रहे हैं इस स्वरूप के अब गुण के वर्णन का वर्णन के बात तो दूर है, इसमें कितने गुण हैं इसकी गणना ही कौन कर सकता है, कोई गणना नहीं कर सकता है। कह रहे हैं कि वैसे व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ कि काले नजरवा विमता सुकल पर भूपान सवक है मेहिका दुभाषा, हम सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि काले न, अब एक जन्म में तो संभव नहीं है या एक दो घंटा में संभव नहीं है, बहुत समय दिए और सुकल्प ही सुंदर शरीर प्राप्त करके या खूब अच्छा अच्छा सोफिस्टिकेटेड मशीन लगा करके कंप्यूटर लगा करके हो सकता है कि कुछ लोग गिनती कर लिए हैं किस चीज़ का, तो कह रहे हैं कि भूपान सव, इससे पृथ्वी पर इस भूमंडल पर कितने धूलिकण कण हैं, ये धूलिकण समझ रहे हैं ना, धूल इसकी संख्या कितना है पूरे भूमंडल पर, ब्रजमंडल की बात नहीं कह रहे हैं, भूपान सव पूरे भूमंडल पर कितने धूल कण हैं, और खे मेहका आकाश में कितने ओस कण हैं। आप देखते हैं सितंबर अक्टूबर से ओस गिरना प्रारंभ होता है, जिधर घास पर देखिए ओस का कण है और रोज गिरता है, तो ये जो गिर गया जो आप देखते हैं इसकी बात नहीं है, कहीं ओस कण है ना, उसका भंडार है तब न गिर रहा है, तो भंडार में कितना ओस कण है उसको गिन लिया। या द्विभाष, हम लोग देखते हैं चंद्रमा से किरण निकल रहा है, सूर्य से किरण निकल रहा है और भी तारा है उससे किरण निकल रहा है, तो जितने नक्षत्र हैं उनसे कितने किरण निकल रहे हैं, कितने किरण हैं इसको जो गिन लिया, जो पूरे भूमंडल के धूलिकण को गिन लिया, जो उस कण के स्टॉक की गिनती कर लिया, और जो सारे नक्षत्र के प्रकाश किरण की संख्या का गिनती कर लिया, ऐसे व्यक्ति में कौन व्यक्ति है जो आपके गुण का गिनती कर सके, तो गिनती ही नहीं करेगा तो उसका वर्णन और रियलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, कोई नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। हम तो आपके कृपा की याचना करते हैं, और इसी क्रम में ब्रह्मा जी अपनी स्थिति बतला रहे हैं। कोई कह सकता है कि तुम भी भगवान हिरण्यगर्भ हो, इतना दिन क्यों बन रहे हो, तो वे कह रहे हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ मानता हूँ, लेकिन थोड़ा तुलना कीजिए, वे कह रहे हैं कि क्वाहम तमो महद हम खचराग निभुरवा संवेष्ट तांत घट सप्त वितस्ति काय केद्रिक विधा बिगणितांड पराणु चर्या वाताध्वरोम विवरस्य चते महित्व, कि हम भी हैं लेकिन अब आपके सामने हमारी स्थिति यह है कि हम तो बिल्कुल शिशु के समान हैं और आप माता के समान हैं, हम गलती किए हैं, हमें अहंकार हो गया, तमोगुण से हमारी बुद्धि बाधित हो गई, हमको ऐसा लगा कि हम भी सृष्टि का रचना करने वाले हैं, तो रजोगुण से हमारी दृष्टि अंधी हो गई, बाधित हो गई और हम आपके महत्व को नहीं समझे, मैं गलती किया, लेकिन आप तो माता के समान हैं, आप क्षमा कीजिए। जैसे किसी गर्भ के किसी माता के गर्भ में कोई बच्चा है तो कभी कभी वो गर्भ में स्थित बच्चा अपने पैर चलाता, माता को अनुभव होता है तो उसको अपराध नहीं मानते, बल्कि वे प्रसन्न होते कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, तो करें कि हम तो गर्भस्थ शिशु के समान हैं, भी गर्भस्थ शिशु के समान कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि देखिए हमारा शरीर सप्त वितस्तिकाय, सात बीता का शरीर है, अपने नाप से प्राय सबका शरीर सात बीता का होता है, तो हमारा भी शरीर सात बीता का है, लेकिन ब्रह्मा जी के सात बीता का मतलब क्या है, वे कह रहे हैं कि क्वाहम तमो महद हम खर चराग निभुर संवेष्टितांड सप्तवितस्तिकाय, मैं सातविता का हूँ, और ब्रह्मांड ही उनका शरीर है। तो यह जो ब्रह्मांड है हम लोगों का, इसका आयाम है, विस्तार है 50 कोटि योजन, 50 करोड़ योजन। एक योजन में 8 माइल, एक योजन में 8 माइल होगा। तो ये जो ब्रह्मांड है यह 50 करोड़ योजन विस्तार का है, और सप्तावरण संयुतम, इसके 7 आवरण हैं। एक तो ब्रह्मांड है तो एक झिल्ली जैसा रखा गया, इसको कटाह कहते हैं, और उसके ऊपर ये जितना ब्रह्मांड है इसके 10 गुना, वो इस 10 गुना जल का घेरा है। क्वाहम तमो महद खम अहम ने आकाश का घेरा है, फिर वायु का है, फिर अग्नि का है, इसके बाद जल का है। तो ऐसे ये घेरा है, नहीं तो उल्टा क्रम में चलेंगे तो होगा कि पृथ्वी ब्रह्मांड तो प्रधान भूमि है, तो इसके ऊपर इसके 10 गुना विस्तार में जल घेरा है, और जल के 10 गुना है अग्नि का घेरा, और उसके 10 गुना वायु का, और उसके 10 गुना आकाश का, और उसके 10 गुना अहम तत्व का, उसके 10 गुना महत तत्व का, ये 7 आवरण है, और यही ब्रह्मा जी का शरीर है। तो ब्रह्मा जी के शरीर का मतलब समझ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारा शरीर है सात्विता का, लेकिन ऐसे शरीर वाले ऐसे ब्रह्मांड तो आपके रोम कुप में एक धूली के समान दिखते हैं। जैसे कभी कभी आप किसी छत के या छप्पर के एक छिद्र से देखते हैं कि प्रकाश निकल रहा है, तो उस प्रकाश में देखते हैं कि बहुत धूल उड़ता रहता है। आप लोग अनुभव किए हैं ना, कोई गवाक्ष है, कोई खिड़की है, छिद्र है, उसमें से प्रकाश आ रहा है, तो खास करके गर्मी का दिन है तो आप देखेंगे कि बहुत धूल कण उड़ रहा है। तो जैसे बहुत धूल कण उस गवाक्ष के किरण में दिखाई देता है, वैसे विगणित ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड आपके एक रूम कूप में वे धूल के समान उड़ते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी भी भगवान हैं, लेकिन कृष्ण भी भगवान हैं, लेकिन दोनों भगवान का अंतर यह है कि ब्रह्मा जी भगवान इस अर्थ में है कि हिरण्यगर्भ है, भगवान को एक्सप्लेन करें हिरण्यगर्भ हम, बहुत बड़ा शरीर है जो 50 करोड़ के ऊपर 7 घेरा है, जो 10-10 बढ़ता जाएगा, कितना भारी शरीर है। लेकिन ऐसा शरीर भी, ऐसा ब्रह्मांड भी भगवान के रोम कूप में वैसे दिखता है जैसे खिड़की से कोई प्रकाश आ रही है और उसमें धूल कण दिखते हैं, कितना भारी अंतर है। और जो हो यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी जब नजदीक आए तो नारद जी खड़ा हो गए, और हेड़े ने पूजा की सामग्री लेकर के, फूल लेकर के या और भी सामग्री लेकर के, और मनु महाराज और प्रियव्रत महाराज भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और ब्रह्मा जी उपस्थित हुए तो उनकी अर्चना की। फिर ब्रह्मा जी कैसे देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ